हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कभी कभी अपनी खुशियों को दूसरों से छुपा कर रखना पड़ता है, वरना नज़र लगने में देर नहीं लगती, आदित्य जी ने कहा और प्रारब्ध सिंह पर एक उड़ती हुई नज़र डाली। चलिए, हमें तो बस इस बात की खुशी है कि खुशियों ने राणा पैलेस के दरवाजे पर दस्तक तो दी, वरना किसी के कर्मों के कारण तो खुशियाँ तो जैसे इस गली का ही रास्ता भूल गई थी। प्रारब्ध सिंह ने भी कहा और आंखों आंखों में आदित्य सिंह राणावत को कुछ जताया। होश में रहकर बात करो प्रारब्ध सिंह राठौर, गलती मेरी नहीं थी, आदित्य सिंह राणावत हल्की आवाज में किंतु गुर्राते हुए बोले। नहीं, तुम्हारी गलती कहाँ होती है, तुम भला गलती कैसे कर सकते हो, गलती तो मेरी थी, मैं ही बिना सोचे समझे बंदूक लेकर निकल पड़ा था। प्रारब्ध सिंह ने गुस्से में आदित्य जी का मजाक उड़ाया। प्रारब्ध जी राणा साहब के यहाँ बैठे होने का लिहाज कर रहे थे, पर आदित्य सिंह तो जैसे गुस्से में सब कुछ भूल गए थे। प्रारब्ध सिंह राठौर ने उनके पुराने जख्म को न सिर्फ खुरचा था, बल्कि उस पर ढेर सारा नमक भी डाल दिया था। आदित्य जी गुस्से से तिलमिला उठे थे। होश में रहकर बात करो प्रारब्ध, अगर मैंने बंदूक उठाई थी तो अभी भी मैंने अपनी बंदूक रखी नहीं है। आदित्य जी अपने चेयर से उठ खड़े हुए और चेतावनी भरे लहजे में प्रारब्ध सिंह राठौर की तरफ उंगली दिखाते हुए बोले, बंदूक चलाना सिर्फ तुम्हें नहीं आता, मुझे भी आता है। इस बंदूक की धमकी जाकर कहीं और देना, मैं डरता नहीं तुमसे, मेरे हाथों में तुमसे कहीं ज्यादा दम है। गुस्से में प्रारब्ध सिंह भी अपने चेयर से उठ खड़े हुए। ऐसा लग रहा था कि दोनों अभी ही उलझ जाएंगे, और शायद अगर इन दोनों के पास अभी इनकी बंदूक होती तो गोली चलाने में भी देर नहीं लगती। लेकिन राणा साहब ने दोनों को रोक दिया। अरे बस भी करो तुम दोनों, बैठ जाओ आदित्य, और तुम भी प्रारब्ध, शांत रहो। मैंने तुम सबसे बार बार कहा है कि अपने झगड़े और अपनी दुश्मनी इस घर के दरवाजे से बाहर रखकर ही आया करो, लेकिन तुम लोग हो कि कभी भी बात मानते हो क्या, सुनने को भी तैयार नहीं होते, राणा साहब ने हल्के गुस्से में कहा। राणा साहब को गुस्से में देखकर दोनों अपनी अपनी जगह पर शांत होकर बैठ गए, लेकिन आदित्य जी की नज़र अभी भी प्रारब्ध जी के चेहरे को गुस्से से देख रही थी। इतने दिनों के बाद बेटी घर पर आई है तो खुशी से उसका स्वागत करने की बजाय तुम दोनों आपस में लड़ झगड़ कर दिखा रहे हो कि तुम दोनों अभी भी नहीं बदले, अमरकांत जी ने दोनों को डांटते हुए कहा। आशुतोष जी ने अपना सिर अफसोस से हिलाया और आंखों ही आंखों में आदित्य को शांत रहने का इशारा किया। तुम इन सब चीज़ों को छोड़ो बेटा, ये बताओ भाभी साहब कैसी हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, क्या वो साथ में नहीं आई हैं। आशुतोष जी ने बातचीत का रुख अब माही की तरफ मोड़ दिया था। नहीं अंकल, मम्मी नहीं आई हैं, माही ने इनकार में सिर हिलाया। पर क्यों, सबके मन में यही सवाल था, सब पूछना भी चाहते थे, पर होठों से नहीं आंखों से अपने इस सवाल का जवाब पाने के लिए राणा साहब की तरफ देख रहे थे। लेकिन राणा साहब ने अपनी निगाहें खीर की कटोरी की तरफ गड़ा दी थीं, जैसे वे इस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते थे। क्या हुआ भाई साहब, प्रारब्ध सिंह ने धीरे से राणा साहब के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए पूछा। होना क्या है प्रारब्ध, जो होना था वो तो 20 साल पहले ही हो चुका है, अब तो उस तबाही के जख्म दिल के अंदर बोझ बनकर पड़े हुए हैं, और शायद इस बोझ को लिए हुए ही हम इस दुनिया से भी चले जाएं, पर फिर भी तुम्हारी भाभी की माफ़ी हमें नहीं मिलने वाली, राणा साहब ने कुछ उदासी के साथ मुस्कुराते हुए कहा। राणा साहब की बात सुनकर सबके चेहरों पर एक दुख और अफसोस की लकीर खींच गई थी। चलो, ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, बेटी के आने की खुशी में तुम सब हमारी बिटिया के हाथों की खीर से मुंह मीठा करो, बाकी बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, राणा साहब ने अचानक से माहौल में आए तनाव को कम करने की कोशिश की। लगता है कि खाना आज बिटिया के हाथों का ही बनाया हुआ था, आशुतोष जी ने माही की तरफ देखते हुए पूछा। माही ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। खाना बहुत अच्छा बना था, मैं तो पहले ही काट से समझ गया था कि ऐसा खाना किसी अपने का बनाया हुआ है, इतना स्वादिष्ट खाना कोई भी कुक बना ही नहीं सकता, आशुतोष जी ने मुस्कुराते हुए कहा। भूखड़ कहीं का, खाने के अलावा आज तक इसे कुछ दिखाई पड़ता है कहाँ है, प्रारब्ध सिंह राठौर ने आशुतोष जी की तरफ देखते हुए मन में सोचा। लेकिन जैसे आशुतोष जी उनके मन की भावनाओं को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने अपना सिर झटक दिया। माही ने हल्के से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे सबके सामने खीर की कटोरी रखनी शुरू कर दी। मुझे दो कटोरी चाहिए। अपने सामने एक कटोरी माही को रखते हुए देखकर विराट ने तेजी से कहा, पहले एक कटोरी ले लो और उसके बाद अगर कम पड़े तो फिर से ले लेना। आदित्य जी के कुछ बोलने से पहले ही आदित्य जी ने विराट को नरमी से समझाया, नहीं, मुझे दो कटोरी ही चाहिए, विराट ने जिद करते हुए कहा। विराट की आवाज पर राणा साहब मुस्कुरा दिए, पर माही ने घूरते हुए उसके आगे पीछे देखा। पर तुम तो अकेले ही हो, एक साथ दोनों कटोरी में ही खाओगे क्या? माही की बात पर विराट ने अपने दांत दिखा दिए। वो क्या है ना कि मेरा जोड़ीदार घर पर है, मैं उसके लिए लेकर जाऊंगा। विराट ने दो कटोरी खीर लेने की ठोस वजह देने की कोशिश की। माही ने अफसोस से सिर हिलाते हुए दूसरी कटोरी भी ट्रे में से निकालकर विराट के सामने रखने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि बिल्कुल मत देना। अचानक से अमोक सिंह राठौर की धीर गंभीर आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसे सुनते ही पूरे डाइनिंग हॉल में एक शांति सी छा गई और माही और विराट ने एक साथ झटके से अमोक की तरफ देखा, जो कि गुस्से से हद तक घूरते हुए विराट सिंह राणावत को देख रहा था। सब लोग अब अमोक की तरफ ही देख रहे थे।